ओके उसके बाद जब हम सोराइसिस की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अगेन अपने ओलैट कैट्स का जो निमोनिया के वो याद रखते हैं, उसमें सबसे पहले पेशेंट के बायोडाटा पूछने के बाद आपने पूछना है कि आपको किस हस्ले से हस्पताल आना पड़ा है, इसके अलावा क्या आपको जल्द की या सेहत की कोई और बीमारी है। ठीक है, तो आप हमारे पास आए हैं तो क्या आप वो मसला मुझे एक दफ़ा दिखा सकते हैं, तो आप देख लें कि क्या लीशंस हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, सो देट बिकम क्लियर इन द माइंड कि मुझे किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। तो फिर उसके बाद अपनी एक जो चीफ कंप्लेंट्स है उसमें पूछना है कि पेशेंट आपको किस मसले से अस्पताल आना पड़ा है, कितने अरसे पहले आप बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद बीमारी जब शुरू हुई तो सबसे पहले क्या बना था, दाना, छाला या उभरा हुआ निशान, किस जगह से शुरू हुआ था और उसमें आपको महसूस क्या होता है। सबसे पहले तो लीजन से रिलेटेड आपने यही क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अगर पेशेंट ये कहेगा कि मुझे ख़ारिश होती है तो आपने ख़ारिश के बारे में ये आपने पूछना कि ठीक है क्या मुसलसल होती रहती है या कभी कभी। अगर 1 से 10 तक नंबर दें, 1 सबसे कम और 10 सबसे ज़्यादा, तो आप इसको कितने नंबर देंगे। क्या घर में और लोगों को भी ख़ारिश होती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये निशान जब जिस्म पर फैले हैं तो कहाँ कहाँ पर फैले और कितने अरसे में फैले, जिस्म के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ये छाले या ये निशान नहीं है, क्या इन निशानों के ऊपर छिलका आता है। जब भी पेशेंट ये कहेगा ना कि छिलका आता है, उससे रिलेटेड भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जैसे किस रंग का छिलका आता है, पतला होता है या मोटा, आसानी से उतर जाता है या चिपका रहता है, और जब उतर जाता है तो पीछे खून निकलता है। उसके अलावा एक्टिव सोराइसिस के इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आप ये पूछ सकते हैं कि क्या रात को सोने के बाद जब उठते हैं तो बिस्तर के ऊपर छिलके भरे हुए तो नहीं होते, या बहुत ज़्यादा छिलके उतर के बिस्तर पे तो नहीं होते, तो इससे आपको एक्टिव सोराइसिस का पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा स्केलिंग और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, फिर आपने छिलके का जो पूछ लिया और अपने एसोसिएटेड पूछ भी लिया कि उसमें आपको क्या उसके साथ आपको क्या होता है, ख़ारिश होती है। ठीक है, जिस्म के कौन से हिस्सों पर नहीं है, कहाँ कहाँ फैली, कितने अरसे में फैली, उसके बाद कितने अरसे में ठीक होता है और पीछे क्या छोड़ जाता है, रंगत में तब्दीली, गढ़े या सफ़ेद मोती जैसे दाने। शुरू होने से पहले आपको कोई बुखार तो नहीं था या आपने कोई दवा तो नहीं ली थी, जैसे सुकून की दवाई, ब्लड प्रेशर, मलेरिया की दवाई, या कोई झटकों के लिए कोई दवाई तो नहीं लेते हैं। क्या इससे पहले आप कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हो जो फ़ौरन से छोड़ दी हो, कोई ज़हनी तनाव का शिकार हुए हों, या फिर कोई शुआओं से इलाज कराया हो। ठीक है, उसके साथ ही आपने किन चीज़ों से आपकी बीमारी बढ़ जाती है, चोट लगने से, कोई दवा लेने से, ज़हनी तनाव से, क्या आप तंबाकू नोशी करते हैं या शराब नोशी तो नहीं करते, उनसे वो बीमारी बढ़ जाती है, या कोई दवा एकदम से छोड़ दें या जो पहले ले रहे हैं उससे बीमारी बढ़ जाती है और किस चीज़ से बेहतर होती है। देन फिर उसके बाद आपने उसके एसोसिएटेड जो अपेंडेजेस हैं, इसके साथ आपके बालों में कोई तब्दीली आई है, क्या सर की जल्द पर इसी तरह के निशान बने हैं, क्या वो सर की जल्द तक ही महदूद रहते हैं या उससे बाहर वाली जल्द को भी मुतासर करते हैं, बाल झड़ गए हैं, टप्पों की शक्ल में झड़ गए हैं या पूरे सल से झड़ गए हैं, पतले हो गए हैं, बाकी जिस्म के बालों पे भी कोई असर आया है, नाखूनों में कोई तब्दीली आई है, जैसे मोटे हो गए हों, पतले हो गए हों, या उनके ऊपर गढ़े बन गए हों या टूट जाते हों। इसके अलावा आपके हेयर, नेल, स्कैल्प और म्यूकोजी, आँखों में, नाक में और मुंह में कोई मसला होता है, जैसे कोई ज़ख़म बनते हो, कोई निशान बनते हो, ज़ुबान में कोई तब्दीली महसूस की है आपने, पेशाब वाली जगह पे सर के कोई निशान बने हो या कोई मसला हो। ठीक है, उसके बाद आपने कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं, डिजीज़ भी पूछ सकते हैं, डिपेंड्स। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में वी नो कि हमने एरिथ्रोडर्मा के बारे में पूछा कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी जल्द मुकम्मल तौर पर लाल हो गई हो और इसकी वजह से आपको हस्पताल में दाखिल होना हो पड़ा, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, क्या कभी इस तरह हुआ कि निशान एकदम से बढ़ गए हों और इसके साथ आपको उसमें निशान उभर गए हों, साथ में बुखार और जोड़ों में तकलीफ़ हुई हो? कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि ऐसे पीप वाले दाने बन गए हों और जो बड़े बड़े निशानों की शक्ल में आए हों और उससे जिल्द उतर रही हो? क्योंकि पस्टुलर सोराइसिस में यूजली हम देखे हैं कि काफ़ी एक्सफोलिएशन होती है, तो अपने से पूछना है। क्या इसके साथ आपकी जोड़ों में कोई तकलीफ़ होती है? कौन सी जोड़ों में तकलीफ़ होती है? दर्द होती है, सूजन या अकड़ाव महसूस होता है? जब अकड़ाव होता है तो किस टाइम पे ज़्यादा होता है, कितनी देर में ठीक होता है? क्या इसके साथ आपकी जबड़े में कोई मसला हुआ है, जैसे दर्द होती हो, अकड़ाव आ जाता हो, या फिर खाना चबाने में कोई मसला पेश आता हो? देन फिर एसोसिएशंस में, इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस इसकी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इनके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछने। और उसके अलावा हमने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे धूप चुभती तो नहीं है, धूप के साथ ही बीमारी बढ़ तो नहीं जाती? क्या इसके साथ आपके पट्ठों में कोई कमज़ोरी तो नहीं महसूस होती? जोड़ों का आप ऑलरेडी पूछ चुके हैं। हाथों पैरों की रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं आती ठंडे पानी में हाथ डालने से या मौसम की तब्दीली से? फिर थायराइड, सर्दी गर्मी में ज़्यादा सर्दी तो नहीं लगती है, सर्दी के मौसम में भी गर्मी तो नहीं लगती? गिलर का मसला तो आपको नहीं है? तो ये आपने एसोसिएशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए। उसके बाद आपने डीडीज़ के बारे में, तो डिफरेंशियल्स के बारे में क्वेश्चंस आप तब पूछेंगे जब आपको ये पता होगा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द सोराइसिस, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज वी नो कि क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस के अपने डिफरेंशियल्स हैं। फॉर इंस्टेंस, कि अगर सिर्फ फ्यू प्लाक्स हैं तो उसमें हम लाइकेन सिम्प्लेक्स, डिस्कोइड एक्जिमा रख सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा डिसेमिनेटेड प्लाक्स हैं तो उसमें आप माइकोसेफंगोइडीज भी रख सकते हैं। अगर जॉइंट की एबनॉर्मिलिटी ज़्यादा लग रही है तो उसमें हम रीटर्स रख सकते हैं। अगर जो गटेट सोराइसिस वाली पिक्चर है तो उसमें फिर हम सेकेंडरी सिफिलिस, पिटेरेसिस राइकेनोइडीज क्रॉनिका, अगर एरिथ्रोडर्मा टाइप पिक्चर है तो पीआरपी। तो जो है, अगर पस्टुलर है तो सब कॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस। तो हर जो प्रेजेंटेशन है ना, उसके अपने डिफरेंशियल्स होंगे, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछें। लेकिन मेनली जो डीडीज हम रखते हैं ना क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस के लिए, वो उसमें माइकोसेफंगोइडीज। तो क्या आपको कभी आपका वज़न कम हुआ है? कैसे पता चला आपको? बस आपने वज़न नापा है, या फिर आपके कपड़े ढीले हो गए हैं, घड़ी ढीली हो गई है, या आपने वज़न नापा है प्रॉपरली? इसके साथ गिल्टियाँ महसूस होती हों, रात को बुखार के साथ ठंडे पसीने आते हों? सेकेंडरी सिफिलिस या सिफिलिस, क्या आपके पेशाब वाली जगह पे कोई ज़ख़म बने जिनमें तकलीफ़ ना महसूस होती हो? अगर आपको लगता है कि सिफिलिस है, फिर आप उससे रिलेटेड दूसरे और क्वेश्चंस पूछ लें कि मैं आपसे कुछ ज़ाती नौयत के सवाल पूछूंगी, आप उसका बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी बीमारी से है और ये आपकी तशखीस में हमारी मदद कर सकेगी। क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आपके पार्टनर या आपके जो, अगर फीमेल है तो आपके शौहर के, अगर मेल है तो आपकी बीवी के पेशाब वाली जगह पे कोई ज़ख़म बने हैं जिनकी तकलीफ़ ना महसूस होती हो? क्या इज़दवाजी ताल्लुकात के अलावा आपके किसी के साथ कोई और इस तरह के ताल्लुकात हैं? ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा पूछना है, मतलब एग्जामिनर को अपने आईडी दे देना है कि आपने सिफिलिस के क्वेश्चंस पूछे हैं। पीआरपी में आपने पूछना है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिल्द पर इस तरह के निशान बन गए हों जिसमें बहुत से जिल्द के कुछ हिस्से मुतासर हैं और कुछ हिस्से मुतासर नहीं हैं, और उसके साथ आपको हाथों पैरों की जिल्द मोटी हो गई हो और उनके साफ में तब्दीली आ गई हो और रंगत पीली हो गई हो? रीटर्स में आपने पूछना है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पखानों में पीप या खून आया हो, या पेशाब में खून या पीप आया हो, उसके साथ जोड़ों में दर्द, तकलीफ़, अकड़ाव और साथ में आँखों में सूजन या रगड़ आई हो, नज़र में कमज़ोरी आई हो? तो दैट वाज अबाउट रीटर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, वी टेलर आर डीडीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, एंड देन वी मेक आर डिफरेंशियल्स अकॉर्डिंगली। हमने क्वेश्चंस पूछने हैं।